ऐ शहीदो तुम हयात हो, ऐ शहीदो तुम वफा की कायनात हो, ऐ शहीदो तुम हयात हो, ऐ शहीदो तुम वफा की कायनात हो।
रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर अम्मा बाद। हाज़िरीन मोहतरम, बिलखुसूस डाइस पे तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम व दानिश्वरान से सलाम और अर्ज़ अदब के बाद, और मोहम्मद अल्लाह सुबहानहु ताला की हमद व सना व पैगम्बर अकरम की नात और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मदह के बाद, आज जिस शख्सियत के बारे में गुफ्तगू की जा रही है वो शहीद सदर अलैहि रहमा के बारे में है। सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया से अफजल हैं। यह आपका इरशाद है कि उलमा अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिस हैं। अगर इन अहादीस की कोई अमली तफसीर देखना है तो वो शहीद सदर अलैहि रहमा की शख्सियत है। अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत और सरवर कायनात की सीरत हमारे लिए हुज्जत है, लेकिन 250 साल अहले बैत अलैहिस्सलाम की इस सीरत के अलावा हमारे सामने तकरीबन 1000 से ज़्यादा का अरसा है। इस अरसे में जो मुख्तलिफ नए नए हालात रोनुमा होते हैं, उन हालात में उम्मत मुस्लिमा को कौन सा मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए और कौन सी रविश इख्तियार करनी चाहिए, ये बातें हमको बताने वाला कौन है? अगर उलमाए किराम ना होते और उनकी सीरत ना होती तो हमको दौरे हाजिर में हालात का सामना करने का सही रास्ता ना मिलता। तो अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत ही के ऊपर ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि अंबिया अलैहिस्सलाम ने इस कारवान को आगे बढ़ाया और अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत की रोशनी में उन्होंने तारीख़ के मुख्तलिफ अदवार में ऐसे मौक़िफ़ इख्तियार किए जो हमारे लिए मशल राह बन सकते हैं और आने वाले उलमा को नए नए राहें दिखा सकते हैं। शहीद सदर के बारे में हर साल तकरीरें होती हैं। लामुहाला एक शख्सियत है, बार बार वही तकरारी बातें होंगी और उनके हालात ज़िंदगी बयान किए जाएंगे, उनकी शहादत का जिक्र किया जाएगा, लेकिन अगर थोड़ी सी दिक्कत और कोशिश की जाए तो नए नए गोशे उसमें से निकाले जा सकते हैं। मैं ऐसे तकी भाई के कहने के बाद मुतालिया कर रहा था तो हलके उला की ये किताब है, इस किताब के ऊपर शहीद सदर के शागिर्द जनाब रज़ा इस्लामी साहब ने अपने कुछ किस्से, जो शहीद सदर के कुछ किस्से उन्होंने यहाँ पर लिखे हैं, जो आम तौर पे ज़िंदगी की ये जुजी बातें आम तौर पे लोगों के सामने नहीं आती हैं, ये बातें मैं आज आपके सामने कशकुल की सूरत पेश करना चाह रहा हूँ और आपके फिक्र और आपकी सोच पर छोड़ता हूँ कि आप इससे क्या मतलब लेते हैं। एक सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। सबसे पहली बात कि जनाब शहीद सदर का मकाम क्या था। उस्ताद रज़ा इस्लामी फरमाते हैं कि एक रोज़ शहीद सदर ने मुझसे कहा कि मैं अय्याम तहसील में, यानि तालीम के अय्याम में अक्सर हरम अमीरुल मोमिनीन में जाया करता था और वहाँ बैठकर किताब का मुतालिया करता था। तो कुछ अरसा ऐसा हुआ कि मैं, वो प्रोग्राम मेरा रुक गया और मैं वहाँ पर जाना तर्क कर दिया। तो मेरे ही ख़ानदान के एक शख्स के ख्वाब में अमीरुल मोमिनीन तशरीफ़ लाए और आकर उन्होंने ये कहा, दरहाली कि मेरी इस मसरूफियत से किसी और को कोई आगाही नहीं थी, लेकिन उस शख्स के ख्वाब में अमीरुल मोमिनीन आए और आकर कहा कि बाखर से कहो कि क्यों ہمارے حرم میں آ کر درس نہیں پڑھتے ہیں. یہ ہے شہید صدر کا مقام. در حقیقت اہل بیت علیہم السلام سے یہ گہری وابستگی ان کو یہ مقام دلاتی ہے, ان کو یہ مقام دلاتی ہے. ہم کسی اور چیز میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کی خوبی اللہ کی بندگی اہل بیت علیہم السلام سے وابستگی میں ہے. یہی وجہ ہے کہ شہید صدر کا وہ مقام ہوا اور اتنا بلند مقام تھا. آپ نے ایک مرتبہ اپنے اسی ایک شاگرد سے کہا کہ میں نے ایک دن شہید صدر سے پوچھا کہ کیا آپ نے آج تک کسی کی تخلیق کی, تو انہوں نے کہا کہ میں نے بالغ ہونے سے پہلے, غور فرمائیے, بالغ ہونے سے پہلے شیخ محمد رضا آل یاسین کی تخلیق میں کرتا تھا, لیکن بالغ ہونے کے بعد مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کس کی تخلیق کی. میں نے کسی کی تخلیق نہیں کی, اپنی رائے پر عمل کرتا ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سن بلوغ تک پہنچنے تک مجتہد مسلم ہو گئے, مجتہد مسلم ہو گئے. یہ مرتبہ آپ کو جو ملا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں جب علم دین حاصل کرتا تھا تو ہر روز 5 طالب علم جتنی محنت کرتے تھے اتنی محنت میں اکیلا کرتا تھا. جب آدمی اس طریقے سے محنت کرے گا تو اس کے نتائج بھی اسی طریقے سے حاصل ہوں گے. ایک خوبی جو شہید صدر میں تھی وہ یہ تھی کہ اپنی شاگردوں کی جہاں اپنی شخصیت کو وہ پروان چڑھاتے تھے, وہیں پر اپنے سے وابستہ جو افراد تھے ان کی شخصیت کی بھی تربیت کرتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے خاص شاگردوں سے یہ کہا کہ حوزے کی جو عام روش ہے وہ یہ ہے کہ فقہ اور اصول پر وہ اکتفا کرتے ہیں, اور یہ روش عام طور پر صحیح نہیں ہے. ایک عالم دین کو مختلف معلومات سے آگاہی ہونی چاہیے کہ وہ کس دور میں جی رہا ہے, سیاسی حالات کیا ہیں, اس دور کے مفکرین کیا ہیں, اور عمومی اطلاعات اس سے اس کو واقف ہونا چاہیے. اسی لیے آپ ان سے کہا کرتے تھے کہ تم میری مباحث فلسفتنا کا مطالعہ کیا کرو اور مباحثہ کیا کرو. اب یہ کہہ دیا تو صرف طالب علموں کے اوپر نہیں چھوڑ دیا, بلکہ جہاں پر وہ بیٹھ کر عام طور پر مباحثہ کیا کرتے تھے وہاں پر خود تشریف لے جاتے تھے اور جا کر دیکھتے تھے کہ میرے شاگرد اس کام میں مشغول ہیں یا نہیں ہیں. اتنا وقت اپنے شاگردوں کے لیے دینا اور اس طریقے سے ان کی ذہنی تربیت کرنا, یہ شہید صدر کا ہی حصہ ہے. وہ لوگ جو تاریخ ساز ہوتے ہیں, وہ لوگ جو تاریخ میں اپنا نام اونچا کرتے ہیں, ان کی شخصیت ایسی ہی بلند ہوتی ہے. اچھا, یہ ساری خوبیاں ان کے اندر کیا فارغ البالی کے عالم میں آئیں؟ پرسکون تھے, بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے, بہت زیادہ پیسہ تھا؟ جی نہیں, انتہائی دردہ قسم پرسی کے حالت میں آپ زندگی گزارتے تھے, تنگ دستی میں زندگی گزارتے تھے. تو تنگ دستی اور زندگی کی معیشتی مشکلات نے آپ کے ارادے کو متزلزل نہیں کیا. آپ کا ارادہ جو بلند تھا اسی ارادے کے اوپر آپ ہمیشہ کاربند رہے. چنانچہ کہتے ہیں, ایک واقعہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ تحصیل ہی کے دوران وہ, بلکہ اس کے بعد بھی جب وہ مجتہد بن گئے تب بھی ان کے عالم یہ تھا کہ ان کے گھر میں بہت ہی تنگ دستی کا عالم رہا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ وہ مقبرہ آل یاسین میں تو گرمیوں کی سخت گرمیوں میں بیٹھ کر لوگوں کو درس دیا کرتے تھے اور اپنے گھر میں درس پڑھا کرتے تھے. تو ان کے پاس اس وقت اپنے شاگردوں کو درس دیتے وقت کوئی ایسا ٹھنڈا کرنے والا آلہ نہیں تھا, یعنی کوئی کولر نہیں تھا, اے سی نہیں تھا, جو وہاں پر ان لوگوں کو آرام سے پڑھنے کا موقع فراہم کرتا. تو سید عبد الغنی کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے یہ کہا کہ حضور, ایک شخص تیار ہے آپ کو قسطوں پر ایک کولر دے. ایک صلوات پڑھیں محمد عالم. معافی چاہتا ہوں, مطالب پراکندہ ہے لیکن شہید کے واقعات سے ہم کچھ نہ کچھ عکس کر سکتے ہیں, اس وجہ سے سنا رہا ہوں. کہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک شخص سے کولر دلا سکتا ہوں, وہ راضی ہے کہ آپ کو کولر دے دے, آپ دو درہم ہر مہینہ اسے دیجئے. तो जनाब शहीद सदर जबान पे नहीं ला पा रहे थे कि मेरी सकत इतनी भी नहीं है कि मैं ये 2 दिरहम दे सकूं। तो आप खामोश हो गए, आप खामोश हो गए, आपने कुछ नहीं कहा। तो ये अब्दुल गनी अर्दबेली ये समझे कि शहीद सदर राज़ी हैं, इस वजह से वो जाकर उस शख्स को उन्होंने कह दिया और उसने कूलर भेज दिया और लगा दिया। जब शहीद सदर के घर में कूलर लगा और आपको इत्तला हुई, कहा गया कि आपके घर में कूलर लाया गया है, तो आप एकदम परेशान हो गए। ये भी नहीं कह सकते थे कि ये कूलर वापस लेकर जाओ, और पैसा भी अदा नहीं कर सकते थे, तो वहाँ से फिक्र में पड़ गए और बड़ी मुश्किल से वो पैसे निकाल कर ये अब्दुल गनी अर्दबिली को देते थे, वो ले जाकर उनको वापस करते थे, यानी उनका वो किस्त अदा करते थे। तो ज़रा सोचिए अजीज़ो कि कितनी मेहनत के बाद ये लोग किस कसम पुरसी और किस तंग दस्ती के आलम में इन मसाइल को, इल्मी मुश्किलात को इस माहौल में बैठकर हल किया करते थे, शागिर्दों की तरबियत किया करते थे और कौम के बारे में सोचा करते थे। शहीद सदर की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि आपके अंदर इंतहाई दर्जा जोश था। आप जब कौम के ये हालात देखते थे तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता था और आप परेशान होकर अक्सर इकदाम करना चाहते थे। एक मरतबा आपने एक प्रोग्राम बनाया और बनाने के बाद ये कहा कि आपने इस शागिर्द से कहा कि हमारे दौर के लोग उसी मरज में मुब्तला हैं जिस मरज में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दौर की कौम थी। वो भी गफलत का शिकार थे, ये भी गफलत का शिकार है। ये लोग अगर गफलत से जागेंगे तो उस वक्त जागेंगे जब इनके आगे कोई शहीद हो जाए, वो खून इनको बेदार करेगा। तो वो आए और आकर उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि कुर्बानी देना पड़ेगा अगर हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने चंद शागिर्दों को लूँगा और लेकर नारेबाजी करूँगा, इतनी नारेबाजी करूँगा कि हुकूमत वक्त मेरी तरफ मुतवज्जे होगी, या तो मेरी मांग मान लेगी या फिर मुझे कत्ल कर देगी। अगर मुझे कत्ल कर देगी तो मैं राह खुदा में शहीद हो जाऊँगा, उस शहादत की वजह से लोग बेदार हो जाएंगे। ये आपने कहा, लेकिन मैं ये इकदाम कब करूँगा? उस वक्त करूँगा जब इस उलमा की जमात में से कोई एक मुझसे राज़ी हो, इसीलिए किसी एक ऐसे मर्जा को राज़ी करूं जो मेरा इस काम में साथ दे। इसीलिए आपने पहले तुल्लाब को जमा करने की कोशिश की और जमा करने के बाद इमाम खुमैनी अलैहि रहमा की खिदमत में आए और आप कहते हैं कि उस वक्त मैं इन्हीं को मर्जियत के लायक समझता था। आप आए शहीद सदर इमाम राहिल के पास और आने के बाद उनसे कहा कि मैं ये इकदाम करना चाहता हूँ। तो इमाम खुमैनी ने कहा कि मैं नहीं जानता कि ये तुम क्या करना चाहते हो। दर हकीकत इमाम ये नहीं चाहते थे कि शहीद सदर जैसा मग़्ज़ मुतफक्किर इतनी जवानी में दुनिया से चला जाए, इसीलिए आपने उनको इस काम से रोका। और ये जनाब शहीद सदर की इंतहाई दर्जा, अब आप देखिए आपके खसूसियात में ये लिखा गया है कि ज़्यादातर आप उन रिवायतों के ऊपर तहकीक करते थे जो तकिये से मुतालिक है, यानी दौरे हाजिर में भी लोग तकिये के नाम पर अपनी अमली जिम्मेदारियों से जो पीछे हो गए। शहीद सदर ये चाहते थे कि लोगों को ये बताएं कि तकिये के अहादीस किन हालात के लिए है। इसीलिए बेदार होने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि जब आप मर्जा बन गए तो उस वक्त भी आपका ये आलम था। एक सलवात पढ़े मोहम्मद आलम, ख़ास तौर पर आपकी ज़िंदगी के आखिरी 10 साल आपका ये आलम था कि आप उलमा को अपने घर में जमा करते थे और अपने ख़ासुल ख़ास शागिर्दों को एक जगह जमा करते थे। जमा करने के बाद वहाँ पर मुसलमानों की मुश्किलात से मुतालिक और मगरबी तहजीब के जो यलगार हैं उससे मुतालिक और दहरियों से मुतालिक, बिलखसूस लाइक और कम्युनिज्म से मुतालिक आप बातें, और मुसलमानों को इन मसाइल के हवाले से कैसे बेदार किया जाए, हौज़े इस्लाम और हौज़े हाई इल्मिया में कैसे इनको इन बातों से आगाह किया जाए, इसके ऊपर हर हफ्ता खसूसी तौर पर जलसात रखते थे। अगर इन मेयार पर देखा जाए तो इस दौर में कितने उलमा ऐसे मिलेंगे जो अपने शिकम और अपने पेट के अलावा या अपने ख़ानदान या अपने मदरसे या अपने मकतब से हटकर समाज के बारे में इतनी गहराई से सोचते हों, और जब सोच नहीं सकते तो फिर वैसी बेदारी की उम्मीद भी नहीं रखी जा सकती। ज़रूरत यह है कि जैसे अपने इतना ज़िम्मेदार आदमी खुद बने। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद आलम मोहम्मद। ये शहीद सदर की शख्सियत थी। आप हमेशा, और एक जगह यहाँ पर ये जिक्र किया गया कि बच्चों की तरबियत के सिलसिले में, ये नुक्ता भी शायद हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल हो कि अगर हम कोई आइंदा नस्ल अगर तैयार करना चाह रहे हैं तो हमारे माँ बाप को और हमारी माओ को किस तरीके से अपने बच्चों की तरफ, बच्चों को देखना चाहिए। तो शहीद सदर ये कहते हैं कि आम तौर पर बाप अपनी औलाद के ऊपर सख्तगीर होता है और माँ मोहब्बत से पेश आती है, लेकिन हमारे घर का ये आलम था कि हमने इस रविश को बदल दिया था कि मैं बच्चों से मोहब्बत के साथ पेश आता था और माँ सख्तगिरी के साथ पेश आती थी। मैं आमतौर पर जो वजूहात शरिया मिलती थी बाज़ाब्ता घर में लाकर रखता था और मेरी बीवी बच्चों से ये कहती थी कि देखो ये पैसे हमारे नहीं हैं, ये कहती थी कि बेटे बच्चों देखो ये पैसे हमारे नहीं हैं, और उसके बाद कहती है कि मेरी बीवी अपने बच्चों को इस बात के ऊपर तैयार करती है कि ए बच्चों ये याद रखो कि तुमको सहियुनिस्त और इसराइल से दुश्मनी करनी है और उनसे मुकाबले में अगर तुमको शहीद हो जाना पड़े तो उस शहादत के लिए तैयार रहो। बताइए क्या माएँ इस तरीके से अपनी औलाद को तैयार करती होंगी? तो वो इस तरीके से तैयार करती थी कि दीन एक ऐसी अजीम शय है कि उसके लिए अगर तुम्हारी जान तुमको देना पड़े तो जान दे दो, मैं माँ होकर तुम्हें तैयार कर रही हूँ, इसीलिए कभी इस बात का गम ना खाना कि मेरी माँ मेरे बात क्या करेगी, बल्कि मैं खुद तैयार हूँ कि तुम इस राह में शहीद हो जाना। तो ये उस ख़ानदान, उस शहीद परवर ख़ानदान के बच्चे हैं और उस शहीद परवर ख़ानदान का बाप है जो अपने बच्चों को ये तालीम सिखा रहा हो वो किस तरीके से इस्लाम के राह में क़ुरबान नहीं होगा। शहीद सदर के यही हालात और यही वाकयात हमारे लिए राह खोलते हैं और इसी से हमको सीरत के गोशे समझ में आते हैं। सब रखते हैं।